आज है 22 जून दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया पार्टी से इस्तीफा।
सुश्री बहन मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांसीराम जी के विचारों की हत्या कर रही है। टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है।
बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत।
कान में आवाज है, हम नीचे गिरे थोड़े धीरे सूखे तो देखेगी लोग दोनों गिर करके वहाँ पर ही हो गया है। इसके बाद गांव के लोगों को हला किए उठा कर हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर मृत घोषित।
और कैसे उत्तर अमेरिका का देश मेक्सिको फंसा हुआ है नशीली दवाओं के चंगुल में, जानेंगे दुनिया जहां में। लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी है। मौर्य ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की और बसपा सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मायावती ने कहा कि मौर्य पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे और पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के एक जाने माने कव्वाल अमजद साबरी की आज कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साबरी कार में जा रहे थे कि दो अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने की कोशिशों में रूस का साथ नहीं दे रहे हैं। रूसी संसद ड्यूमा के निचले सदन में एक भाषण में उन्होंने कहा कि पश्चिमी जगत वही गलतियां कर रहा है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की थी, जब कुछ देशों ने नाजी खतरे से साझा तौर पर निपटने की सोवियत अपीलों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कहा, ये जरूरी है कि सुरक्षा पर एक साझा रुख अपनाया जाए, ये सब के लिए अहम है। रूस ने बार बार कहा है कि वो इस अहम मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन अभी तक हमें कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले भी हुआ था। ये थे पुतिन के शब्द। रूसी राष्ट्रपति ने नेटो पर रूस की सीमा के आसपास आक्रामक गतिविधियां बढ़ाने का भी आरोप लगाया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में कल यूरोपीय संघ में रहने या न रहने के मुद्दे पर जनमत संग्रह हो रहा है। ऐसे में संघ की सदस्यता के समर्थक और विरोधी अपने प्रचार अभियान के आखिरी दौर में लोगों को लुभाने में जुटे हैं। संघ छोड़ने के समर्थक और लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ को छोड़ता है तो वो अपनी प्रवासी नीति खुद तय कर पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। वहीं ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का कहना है कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पाएगा और जलवायु परिवर्तन और चरमपंथ जैसे मुद्दों से भी बेहतर तरीके से निपट पाएगा। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने बिजली मंत्री अहमद खमीस से नई सरकार का गठन करने को कहा है। इस महीने की 6 तारीख को नई संसद के शपथ ग्रहण के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री वायल अल हल्की का कार्यकाल खत्म हो गया। 55 वर्षीय खमीस 2 साल से सीरिया के बिजली मंत्री हैं। और लीबिया में सरकार के समर्थक बलों और इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की झड़प में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अस्पताल के प्रवक्ता ने बताया कि आईएस के गढ़ सिर्त में मंगलवार को हुई लड़ाई में 36 लोग मारे गए हैं, जबकि 140 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस बीच लीबिया की सरकारी समाचार एजेंसी लाना ने खबर दी है कि पश्चिमी शहर गाराबुली में गोला बारूद डिपो में हुए धमाके में 29 लोग मारे गए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मौर्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी प्रेस वार्ता बुलाई और कहा कि उन्हें पार्टी से निकालने का विचार पहले ही हो रहा था। आज के पूरे घटनाक्रम पर नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
इसी वर्ष फरवरी में जब मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने घर इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो बाहर के गेट से लेकर भीतर ड्राइंग रूम और खाने के कमरे तक मायावती की कम से कम 3 प्रतिमाएं और कम से कम 10 तस्वीरें विभिन्न मुद्राओं में दिखी थी। तीन महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य तकरीबन रोज सुबह मायावती के घर पर जाते थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर जैसे बड़े नेताओं के साथ बैठकर 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाने में शामिल रहते थे। बीबीसी हिंदी से बात करते समय उन्होंने फरवरी में कहा था कि बहन जी की अगली सरकार आने में कोई शक ही नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी इस उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रह करके जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी पाई है। एकमात्र सुश्री बहन मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो कहती हैं सरकार में आने के बाद उसको अमली जामा भी देती हैं।
यही स्वामी प्रसाद मौर्य आज दोपहर में जब एक प्रेस वार्ता में मायावती के बारे में बात कर रहे थे तो लगा ही नहीं कि बहन जी के बारे में ही तीन महीने पहले उन्होंने इतनी बड़ी बातें की थी। सुनिए आज क्या आरोप लगाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी पूर्व नेता पर।
सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही है और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है।
वैसे बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती अब तक बड़े नेताओं में होती थी। अगर नहीं होती तो मायावती शायद उन्हें उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं मनोनीत करती। मौर्य इस विधानसभा में पडरौना से विधायक हैं और पिछली मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस वार्ता के बारे में एक विशेष बात ये रही कि शायद पहली बार किसी बीएसपी नेता ने अपनी शीर्ष नेता यानी मायावती को प्रेस वार्ता में ही पीछे छोड़ दिया। आमतौर पर यही होता रहा है कि मायावती जब भी किसी नेता से नाराज हुई थी तो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उस नेता को सार्वजनिक तौर पर पार्टी से निकाले जाने की घोषणा कर दी थी। अब आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहल कर दी तो मायावती कैसे पीछे रहती। आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया।
अपने दो बच्चों को लड़की को भी टिकट दिलाया बीएसपी से और लड़के को भी दिलाया, खुद भी चुनाव लड़े। मैं इसके पक्ष में नहीं थी लेकिन हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों ने ये कहा कि बहन जी एक बार इलेक्शन में यदि गड़बड़ होगा तो ठीक नहीं है, आगे यदि ऐसा गड़बड़ करते हैं तो आप इलेक्शन से पहले इनको निकाल के बाहर करने का है। मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या।
बहरहाल सच क्या है ये तो मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की ही बात है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मायावती और उनकी पार्टी पर पहले भी कई दफा इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि टिकट वितरण में गड़बड़ियां होती हैं। हालांकि मायावती ने हमेशा इन बातों का सार्वजनिक खंडन किया है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं यूपी में राजनीतिक गहमागहमी भी एक नया आयाम पकड़ रही है। शायद यही वजह थी कि मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं आजम खां और शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ न सिर्फ सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बता डाला।
एज ह्यूमन बीइंग और राजनेता के तौर पर हमेशा पसंद किया और सदन में भी उनका रोल जितना भी रहा है हमेशा अच्छा रहा है।
देखिए अगर अच्छे आदमी को तो मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे सभी अच्छे आदमियों को हम अपनी पार्टी में ले लें।
तो अब जब मायावती और उनके पुराने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य में दूरियां बढ़ चुकी हैं तो जाहिर है सबकी जुबान पर सवाल एक ही है, मायावती को मौर्य के जाने से नुकसान होगा कि नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब किस राजनीतिक दल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
जैसा कि आपने नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट में सुना, मौर्य के इस्तीफे को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मैंने इन्हीं सवालों पर बात की वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव से ऐन पहले बहुत बड़ा धक्का है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं थे बल्कि बहुजन समाज पार्टी में जो टॉप के चार पांच बड़े नेता हैं। हालांकि बीएसपी में आमतौर पर मायावती जी के आगे कोई नहीं होता है लेकिन चूंकि ये पिछड़े वर्ग से आए हुए नेता थे तो दलित और पिछड़ी एकता, पिछड़े वर्ग की एकता का जो एक फार्मूला बीएसपी का था उसके हिसाब से ये बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के।
अब क्या देखते हैं कि 2017 में वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और आप जो कह रहे हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग की एकता के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, तो क्या 2017 में दलित और पिछड़ा वर्ग वोट खिसका के ले जा सकते हैं मौर्य?
देखिए दलित समाज के जो वोट है वो आमतौर पे बीएसपी को मिलते हैं लेकिन दलितों का एक सेक्शन ऐसा है जिसके वोट अलग अलग पार्टियों को जाते हैं, जो बड़ा तबका है वो बीएसपी की तरफ जाता है। लेकिन जो गैर यादव पिछड़े वर्गों में जो अन्य जातियां शुमार होती हैं, जिसमें कि मौर्य जाति स्वयं भी है जो कुशवाहा कही जाती है उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी, तो उस समुदाय को अभी हाल में बीजेपी ने काफी महत्व दिया और उसी समुदाय से आने वाले एक नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। तो मैं समझता हूं कि वो तबका बीएसपी से पहले जुड़ा हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं की वजह से, उसमें बहुत बड़ा घाटा होगा मायावती जी का। और दूसरी बात, जिस तरह हाल के दिनों में मायावती निर्णय कर रही हैं, फैसले कर रही हैं, उससे ये एक संदेश जा रहा है कि वो जिस तरह उनकी पार्टी कांशीराम ने खड़ी की थी बहुजनवाद के लिए, उस फिलॉसफी और उस विचारधारा से वो समझौता कर रही हैं। उन्होंने हाल में देवरिया जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, वहाँ के एक बड़े उस इलाके के एक बड़े पार्टी के नेता को जो दलित समाज से आते स्वयं हैं, उनको इसलिए केवल पार्टी से बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर ब्राह्मणवाद पर एक टिप्पणी की थी, ब्राह्मण जाति पर नहीं, ब्राह्मणवाद पर एक टिप्पणी की थी। ठीक इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा यह जाता है कि हाल के दिनों में जिस तरह वो विभिन्न समुदायों की सभाओं में जाकर बोलते थे और बहुजन दर्शन के पक्ष में अपनी बातें रखते थे, मायावती जी उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उनकी पार्टी के एक दूसरे प्रमुख नेता जो उनके कानूनी सलाहकार भी हैं सतीश चंद्र मिश्रा, इस तरह के वक्तव्यों और इस तरह के भाषणों से वो बहुत दुखी रहते थे, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य इत्यादि के। तो मुझे लगता है कि पार्टी में एक दो फाँक अंदर है और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी छोड़नी पड़ी है।
अब मौर्य का अगला रुख क्या हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की तरफ से भी टिप्पणी आई है और उन्होंने इसे काफी सकारात्मक रूप में लिया और कहा है कि वो बहुत ही बड़े नेता हैं।
यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हर जिले में खासकर सेंट्रल यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं पिछड़े वर्गों के, और वो स्टूडेंट मूवमेंट से आते हैं, छात्र आंदोलन से आते हैं, तो और पढ़े लिखे लोगों में है, बीएसपी में बोलने वाले नेताओं में विधानसभा के अंदर वो सबसे मुखर रहे हैं हमेशा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो सभी पार्टियां जो बीएसपी के अलावा हैं वो उन पर नजर जरूर गड़ाए होंगी कि वो किधर जाएंगे। जितना मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक जर्नलिस्ट के तौर पे जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुत्व की जो लाइन है उसको मुझे नहीं लगता कि वो मंजूर करेंगे। हो सकता है कि वो कुछ अलग ढंग से कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात करें या कोई तालमेल करें या किसी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं।
अब देखना होगा किस पार्टी का दामन थामेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने के कारण बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में करीब 88 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में बिजली गिरने से करीब 57 लोगों की मौत हो गई है और करीब 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैंने औरंगाबाद जिले के दरमेकला गांव के कृष्णा सिंह से बात की। जब बिजली गिरी, कृष्णा सिंह अपने खेत में थे। उन्होंने अपना अनुभव बीबीसी को बताया।
हम और विनय सिंह दोनों एक जगह खड़े होकर के खेती के संबंध में बातचीत कर रहे थे, बियावा करने के संबंध में भी करना है, और उसी बगल में उनके लड़का और उनके बड़े भाई 10-15 फीट की दूरी पे बगल में ही खेत में थे, और बात करते करते ही अचानक बिजली गिरी और हम लोग एका गए, और उनके बड़े भाई जो थे वो उधर से आवाज दिए कि तीनों के तीनों समाप्त हो गए। इसी में हमको कान में आवाज आया, हम जो नीचे गिरे होते थे धीरे से उठे तो देखे कि लोग दोनों गिर करके वहाँ फरी हो गया है। इसके बाद गाँव के लोगों को हला किए, उठा करके हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर मृत घोषित।
बिजली गिरी तो क्या महसूस क्या हुआ?
लगा कि पूरा मैंने शरीर के अंदर कुछ है नहीं, तो पूरा झटका टाइप का और फेंका गया कि जस्ट बगल में खेत में पानी था, बीज डालने के लिए खेत जोता हुआ था, मेड़ के ऊपर हम लोग खड़े थे, हम पानी वाले खेत में उसी मेड़ के मैंने बाएं साइड फेंका गए और वो विनय सिंह दाहिने साइड फेंका गया, मात्र 1-2 फीट की दूरी पे झटका महसूस हुआ। इसके बाद कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 5 मिनट के बाद वही आवाज दिए तो हम उठे तो देखे कि दोनों बहुत गंभीर स्थिति में समाप्त हो चुके थे।
बिहार के औरंगाबाद जिले के कृष्णा सिंह का कहना था कि जब बिजली गिरी तो वे बेहोश हो गए थे। वहीं बिहार में पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना से नीरज सहाय।
बिहार में भीषण गर्मी के बाद मंगलवार को मॉनसून की पहली तेज बारिश किसी के लिए राहत भरी रही तो बहुतों को जिंदगी भर का गम दे गई। तेज हवा और भारी बारिश के बीच हुए वज्रपात ने राज्य के अलग अलग जिलों के कुल 57 लोगों को झुलसाकर मार डाला तो 14 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वज्रपात के शिकार 13 पशुधन भी हुए। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वज्रपात से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी पटना से सटा ग्रामीण इलाका रहा। पटना में इससे 6 लोगों की मौत हो गई। 5 मौत की पुष्टि के साथ दूसरा जिला बक्सर रहा। जबकि नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और पूर्णिया जिलों में 4 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 11 जिलों से भी जान माल के नुकसान की विभागीय पुष्टि हुई है। राज्य में कल आई भीषण आंधी पानी के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार वालों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें सभी नोडल विभाग और जिला प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी किया गया है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
उधर पड़ोसी राज्य झारखंड में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बिजली गिरने के कारणों को बारे में बताया।
सर्कुलेशन बनता है तो उसके कारण नमी मिलती है, थोड़ी सी भी नमी अगर मिलती है, इधर से नमी का थोड़ा सा भी प्रवाह अगर बंगाल की खाड़ी से हो रहा है और उधर से वो हीटिंग हो रहा है, तो इन दोनों के मिक्सिंग के कारण, कोल्ड एयर और हॉट एयर के मिक्सिंग के कारण एक फ्रंट जोन बनता है, जिसके कारण की कॉन्वेक्टिव क्लाउड का डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं उसमें होता क्या है कि वो झारखंड प्रोन इसीलिए है कि झारखंड बंगाल की खाड़ी से नजदीक है बनस्पत की, और बाकी तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे झारखंड से लेकर के आप क्रॉस करेंगे बंगाल, उड़ीसा और इधर आसाम तक, वो इंटेंसिटी उसका बढ़ता जाता है।
बिजली गिरने के कारणों के बारे में बता रहे थे मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव। इधर मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी जानकारी दे रहे हैं भोपाल से शूरे न्याजी।
मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिछले 48 घंटों में प्रदेश के अलग अलग स्थानों में 19 लोगों की मौत हो गई है। सतना जिले में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की मौत उस समय हो गई जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसी वक्त उस पर बिजली गिर गई। वहीं रीवा जिले में भी 2 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को हुई बारिश के दौरान 16 लोगों ने अपनी जान बिजली गिरने की वजह से गंवा दी थी। राजधानी भोपाल सहित मानसून ने प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर दस्तक दे दी है। लोगों को इस बारिश से जहां बेहताशा गर्मी से राहत मिली है, वहीं ये बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है। बारिश के बाद कई शहरों के कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही, वहीं कुछ निचले स्थानों में पानी भरने की शिकायत भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कई स्थानों में बुधवार को भी बारिश और आंधी की संभावना है।
बिजली गिरने से 3 राज्यों में 88 लोगों की मौत। ये थे भोपाल से शूरे न्याजी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज व मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। मैक्सिको की धरती पर कभी बढ़िया खेती होती थी और देश अपने खूबसूरत नज़ारों और उद्योगों के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 3 दशकों में इसकी पहचान दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफियाओं की जमीन के रूप में बनी है। आखिर क्या है ऐसा कि हंसता खेलता उत्तर अमरीकी देश नशीली दवाओं के चंगुल में फंस गया। निखिल रंजन ने दुनिया जहां में इस हफ्ते यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
कोई 3 दशक पहले की बात है, कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार ने अमेरिका प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए देश का सारा विदेशी कर्ज चुकाने का प्रस्ताव दिया था। ये एक बानगी थी कि उत्तर अमेरिका के इन ड्रग सौदागरों के पास कितना पैसा होगा, और जेब में पैसा हो तो आत्मविश्वास आ ही जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि पाब्लो कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना चाहता था और उसके हर महीने $2,500 सिर्फ नोटों की गड्डी बनाने के लिए रबर बैंड खरीदने में खर्च हो जाते थे। आज मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड अल चापो गुजमान पुलिस की गिरफ्त में है और अमरीका प्रत्यर्पित होने की तलवार उसके सिर पर भी लटक रही है। पर इन दोनों गिरफ्तारियों के बीच बदलाव ये आया है कि नशीली दवाओं का सबसे बड़ा केंद्र अब मेक्सिको है। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे।
जब वॉर ऑफ ड्रग शुरू किया गया 1989 में, तो उसके बाद से ड्रग वॉर फैला। 1980 से पहले मेक्सिको ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिकन्स ने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का दावा करते हुए ये कहा कि साहब हम अपने यहाँ डिमांड को तो नहीं रोक पाएंगे, सप्लाई की प्रॉब्लम है, सप्लाई आप लोग रोकिए। ये उससे स्प्रेड हुआ है और उस चक्कर में मेक्सिको बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, ट्रांजिट के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी और मनी लॉन्ड्रिंग, उस तीनों के लिए। मेक्सिको में दो ड्रग्स हैं, एक तो कोकेन है जो कोलंबिया, पेरू और बोलीविया से आती है। मेक्सिको हेरोइन भी प्रोड्यूस कर रहा है।
हेलीकॉप्टर में सवार कमांडो स्नाइपर राइफलों से सड़क पर भागती एसयूवी में बैठी सवारी का निशाना ले रहे हों तो सिनेमा के पर्दे पर यह दृश्य देखकर दर्शकों का रोमांच उफान करने लगता है। लेकिन अमरीकी राज्य टेक्सास से लगती मेक्सिको की सीमा पर यह नजारा असल जिंदगी में इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब यहाँ के लोगों को रोमांच नहीं होता। मेक्सिको में ड्रग माफियाओं की आपसी जंग और पुलिस से हुई मुठभेड़ में अब तक करीब 28,000 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या आम लोगों की है। हाल ही में खबर आई कि हिंसा से बचने के लिए सैकड़ों लोग मेक्सिको शहर से पलायन कर गए। मेक्सिको में नशीली दवाओं का कारोबार आम लोगों के दम पर ही चलता है। देश में अव्यवस्था, अराजकता और बेरोजगारी से निराश लोगों को पैसा देने वाला काम ड्रग्स के सौदागरों के पास है और सरकार की कमजोरी का फायदा उठाकर वो अंदर तक घुस रहे हैं। खेती बाड़ी से लेकर निर्माण तक में उनकी चलती है, अर्थव्यवस्था में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है और राजनेताओं की जरूरतें भी वही पूरी करते हैं।
वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमेशा से दबा करके रखा गया है। ये सारे जितने डर को ट्रैफिकर्स थे, ये सरकार में घुस गए, ये रूलिंग पार्टी में घुस गए वहाँ। और अब हालत ये कि 9 से 5 तक वहाँ शहर के अंदर मेयर कुछ कोई और होता है और रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कोई और मेयर बैठा होता है। उन्हीं के हाथ में कानून है, उन्हीं के हाथ में पैसा है। तो स्टेट और नार्को ट्रैफिकर्स के बीच जो अंतर था वो बिल्कुल जीरो हो चुका, खत्म हो चुका है। उनके पास फायर पावर भी है, उनके पास पैसा भी है और पब्लिक सपोर्ट है। नार्को ट्रैफिकर के पास पब्लिक सपोर्ट यूं है कि डेवलपमेंट का काम आपने किया नहीं, खासतौर पर जो गरीबों के इलाके थे, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो किसी हद तक स्टेट जिम्मेदार है इस सारी मुसीबत के लिए और इसमें जो स्टेट के एलिमेंट्स हैं उनको अपना फायदा नजर आता है, बड़ा पैसा है। अभी इलेक्शन हुए 6-7 स्टेट गवर्नर्स के, हर एक अखबार में लगातार ये खबर आ रही थी कि फला नार्को कार्टेल जो है वो उस कैंडिडेट के पीछे है, फला नार्को कार्टेल उस कैंडिडेट के पीछे है।
कुछ साल पहले मेक्सिको में बिजनेस रिपोर्टर के तौर पर काम करने गए एक पत्रकार को जब हर दूसरे तीसरे दिन ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी कहानी लिखने की नौबत आ गई तो उसे अंदाजा हुआ कि मेक्सिको में ये धंधा कितना बड़ा है। दरअसल ये जितना बड़ा है उतना ही व्यवस्थित भी। वो पत्रकार थे टॉम वाइनराइट और उन्होंने इस कारोबार के बिजनेस मॉडल पर नार्कोनॉमिक्स नाम से किताब भी लिखी। इसमें उन्होंने बताया है कि इन ड्रग्स कारोबारियों और वॉलमार्ट या फिर मैकडॉनल्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के काम करने का तरीका एकदम मिलता जुलता है। NPR बुक्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक बकौल वाइनराइट,
ड्रग्स कारोबारी कोका या अफीम उगाने वाले किसानों के फसल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं और इस तरह का एकाधिकार भी स्थापित करते हैं कि या तो किसान उन्हें ही अपनी फसल बेचे या फिर उनकी तय की हुई कीमत पर। इसके अलावा वो स्थानीय अपराधियों को अपने साथ मिलाकर उन्हें बाकायदा अपना नाम, पहचान और प्रशिक्षण देते हैं और इसके बदले में उनसे पैसे लेते हैं और उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं।
मेक्सिको का उत्तरी इलाका कभी अच्छी खेती और उद्योग धंधों के लिए विख्यात था और आज भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन खेती अब माफियाओं के चंगुल में है और नशीली दवाओं के बढ़ते कारोबार का साया दूसरे उद्योगों पर है। वाइनराइट और कई जानकार मानते हैं कि ड्रग्स के कारोबार को कानून के दायरे में लाकर इस पर लगाम कसी जा सकती है। स्विट्जरलैंड में इसकी पहल भी हुई है। वहाँ हेरोइन के आदि लोग डॉक्टर के पुर्जे पर इसे सरकारी दुकानों से हासिल कर सकते हैं। एम्स्टर्डम में भी कॉफी हाउस की तरह से ही चरस पीने के सार्वजनिक ठिकाने हैं। ज्यूरिख में वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह,
जो मेजोरिटी जो पार्लियामेंट में है वो अभी लीगलाइज नहीं करना चाहते क्योंकि उसके सब नुकसान है कि ये है कि अगर लीगलाइज कर देंगे तो हर आदमी स्विट्जरलैंड में आएगा हेरोइन लेने के लिए, सारा यूरोप कंसंट्रेट हो जाएगा, इसलिए इस डर से नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो बोलते हैं लीगलाइज के लिए, वो ये बोलती हैं एक तो इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, सस्ती हो जाएगी, और जितनी पुलिस की फोर्सेज है जो आज तक लगी हुई हैं हेरोइन के चक्कर में, जिनको आदमियों को पकड़ने के लिए, वो किसी दूसरे उसमें कन्वर्ट करी जा सके। कोई आदमी हेरोइन का बड़ा उसको हमेशा चाहती है तो डॉक्टर्स उसको एक पैरेलल टेबलेट दे देते हैं ताकि उसको हेरोइन खरीदने ना पड़े, ये स्विट्जरलैंड में लीगल है।
मेक्सिको की सरकार इस समस्या को रोकने के लिए अब तक अमेरिका के सुझाए रास्ते पर चलती रही है, जो यहाँ की नशीली दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार और उपयोग करने वाला देश है। अमेरिका मानता है कि सप्लाई कम हो जाए तो खपत भी कम हो जाएगी, और इसीलिए मेक्सिको पर इन दवाओं की खेती और माफियाओं को खत्म करने के लिए दबाव बनाता है। सरकार कभी हेलीकॉप्टर से जहर छिड़क कर खेतों में खड़ी फसल खत्म करती है तो कभी सेना के जवान जाकर इन फसलों को आग लगाते हैं। प्रोफेसर अब्दुल नाफे,
अगर आप खड़ी हुई फसल को बर्बाद कर रहे हो तो उससे खाली जो गरीब किसान है उसी का नुकसान है। वो कल को वही गरीब किसान है वो नरकोटिक ट्रैफिकर का कोरियर बन जाता है, और आप वहाँ ऐसी दवाएं छिड़कते हो कि उसके बाद चलो जो क्रॉप से वो तो खराब हुई, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं उग सकता। 2005 के आसपास मिलिट्री को डाला गया, और उससे बजाय इसके कि ये ड्रग की प्रॉब्लम कम होती और फैल गई और गहरी होती चली गई। मिलिट्री के डालने से ये हुआ कि जो बड़े बड़े कार्टेल थे वो स्प्लिट होकर के स्मॉल कार्टेल बन जाते हैं। पहले आपको 5-10 बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड नजर आ रहे थे, अब इतने ज्यादा हैं कि आपको ये नहीं मालूम कौन ड्रग लॉर्ड है कौन नहीं है। एक दो को पकड़ लिया, अल चापो को पकड़ा, ठीक है आप एक्सट्राडाइट कर दीजिए। एल चापो के जितने लेफ्टिनेंट थे उन्होंने अपने अलग सेपरेट कार्टेल्स बना लिए हैं, अब उनको पकड़ना और भी मुश्किल होगा। तो ये एक्चुअली लूजिंग वॉर है। पहले दिन से जो स्ट्रेटजी है, जो थिंकिंग है कि हम ऐसे ड्रग्स को रोक देंगे, अमरीका की वो थिंकिंग मुझे लगता है गलत है, और ये कंट्रीज फिर सफर कर रहे हैं, मेक्सिको कोलम्बिया वगैरह।
$400 में खरीदी गई कोका की पत्तियों से तैयार कोकीन अमरीका के बाजार में $1,00,000 की बन जाती है, और इस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है अमरीकी सौदागरों को। मेक्सिको, कोलंबिया और बोलीविया जैसे देश इन नशीली दवाओं का दंश झेलते हैं और बदनाम भी होते हैं, लेकिन ना तो धंधा रुकता है ना अमरीका। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहां आप कल सुबह विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। पाकिस्तान के जाने माने गायक और मशहूर कव्वाल अमजद साबरी को कराची शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों ने अमजद साबरी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें 45 साल के कव्वाल और उनके साथी बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अमजद साबरी मशहूर कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के बेटे थे और वे पाकिस्तान के जाने माने सूफी कव्वाली गायकों में से एक थे।
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली। भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली आदाजी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली।
तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता,
तुम्हारे
सूफी कवाली गायकों में से एक अमजद साबरी की गोली मारकर कराची में हत्या कर दी गई है। दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।